Okay, we are live now. My name is Faizan and I'm a technology enthusiast.
और मेरा नाम शहवार अहमद है और मैं एक लेजर साइंटिस्ट हूँ।
और हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेक लॉग पॉडकास्ट नंबर 9। आज जो हमारे साथ गेस्ट होंगे, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो लोग इनको जानते हैं और जो लोग पी एफ किट से रिलेटेड हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 3D एनिमेशंस के, जब ये खुद एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते थे और कार्टून कैरेक्टर्स और कार्टून फिल्म स्मॉल 3D एनिमेशंस बनाने का काम था, इनका पैशन था। उसके बाद इन्होंने जो है पाकिस्तान एयरफोर्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन की अपने बैचलर्स के लिए, और वहाँ पर इन्होंने इनका जो मेन इंथुजियाज़म पॉइंट था वो था रोबोटिक्स। और इन्होंने बहुत सारे रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन खेले और जूनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वर्कशॉप जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाई, जिनमें हम भी इनके जो है वो शागिर्द थे। और सिर्फ यही नहीं, ये वो वाहिद स्टूडेंट थे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन्होंने इंडिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने शाहीन एयरलाइन ज्वाइन की और शाहीन एयरलाइन के अंदर एज अ ट्रेनी इंजीनियर जो है इन्होंने काम करना शुरू किया। और फिर आपको पता है पाकिस्तान के हालात का, कभी भी कोई चीज़ जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। तो शाहीन एयरलाइन बंद हुई, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, उस मुश्किल वक्त को इन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी स्किल्स को किस तरीके से अप्लाई किया, उसी के ऊपर आज का जो है हमारा पूरा पॉडकास्ट होगा। और उसी से हम देखेंगे कि एक स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी के अलावा मोटिवेशन और जो कंसिस्टेंसी और जो विल पावर जो है चाहिए होती है, उसकी जो ज़रूरत होती है वो किस तरीके से हासिल की जाए। तो अभी वेलकम यू बिलाल भाई।
अस्सलाम वालेकुम फैजान और शेरी, और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स, और जो तुम लोगों ने पूछना है वो पूछो, और आई एम ऑल हियर।
तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा आपकी अभी तक की जर्नी के बारे में, कि एक बहुत हमारी तो आपसे बात हुई है, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ यू नो जर्नी, एंड किस तरीके से आप जॉब टू जॉब गए, बल्कि शुरू से अगर बिल्कुल स्टार्ट कर लें, आपने जो 3D एनिमेशन का काम स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन थी उस उम्र में? लोग जो है वो बच्चे जो है वो क्या बोलते, टाइम ज़ाया कर रहे होते अपने, कोई बाहर खेल रहा होता है, कोई मोबाइल में लगा हुआ होता है, कोई शोना जानू ये कर रहा होता है, तो उस एज के अंदर क्या वो मोटिवेशन थी कि जो आपने सोचा कि मैं 3D एनिमेशन का काम स्टार्ट करूँ, वो क्या पैशन था और फिर आगे लेके चले इस चीज़ को पूरा, जो आपने रोबोटिक्स तक का काम किया?
यार बेसिकली व्हेन आई वाज इन बीकन हाउस, जब मैं वहाँ पे अपना ओ लेवल्स कर रहा था, तो उस टाइम जो है ना, बीकन हाउस की सबसे अच्छी मुझे चीज़ ये लगती थी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को ना बहुत ज़्यादा उभारा भी जाता था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था। तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सिखा रहे थे 3D से रिलेटेड, तो मैं जब स्टूडेंट्स को वो देखता था तो उधर से मेरे अंदर शौक पैदा हुआ कि यार ये लोग डबिंग भी कर रहे हैं, एनिमेशन भी कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर को मैंने जब खुद यूटिलाइज करना शुरू किया, तो एक तो मेरे अंदर स्किल्स वैसे भी थे राइटिंग के, मैं स्क्रिप्ट्स राइट करता था, हॉरर स्टोरीज, फनी स्टोरीज, ये सब कुछ लिखता रहता था। तो मैंने उन दोनों को मर्ज किया, फिर मैंने बकायदा एक कार्टून वगैरह बनाने शुरू किए, और वो 50-50 मिनट्स के कार्टून होते हैं जिसको बनाने में मुझे तकरीबन 6 मंथ्स लग जाते थे। और उस 6 मंथ्स के अंदर मैं स्क्रिप्ट भी लिखता था और तकरीबन 11 से 12 बंदों की मैं उसमें डबिंग भी करता था। वहां से जब ये शौक बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, पीक पे गया, तो मैंने देखा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिमिटेशंस है। देन मैंने मार्केट में सर्च किए सॉफ्टवेयर, तो दो सॉफ्टवेयर उस वक्त मार्केट में सबसे टॉप पे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-2007। तो उस वक्त एक माया और एक 3D स्टूडियो मैक्स, ये नाम बहुत
माया
लोग अच्छी तरह
माया
सुनते होंगे, माया, तो सब माया है, ये वो वाली चीज़ है। अच्छा, वायरल। तो उस वक्त इन सॉफ्टवेयर के ऊपर फिर मैंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनल डिप्लोमा हासिल किया, और वहाँ से फिर मैंने 3D एनिमेशन के स्किल सीखे अपने इंटरमीडिएट में। जब मैं 2008 की फॉल में PF किट मैंने ज्वाइन की, वही 3D एनिमेशन स्किल्स मैंने अपने यूनिवर्सिटी में भी शो किए, और फिर सीनियर्स मुझसे आके उन्हीं 3D एनिमेशन के ऊपर अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस बनाना शुरू कर दिए उन्होंने। तो इस चीज़ से फ़ायदा ये हुआ कि व्हेन दे अप्रोच मी फॉर देयर 3D एनिमेशन, तो मैं उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेता था। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स वो लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बना रहे होते थे, मैं उसी को अपने लोग अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इसके प्रोजेक्ट में वही चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी उस एज में। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब मेरा स्प्रिंग 9 हो गया, फॉल 9 मेरा सेकंड सेमेस्टर था, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाना शुरू कर दिए जो कि बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मैंने कॉम्पिटिशन्स भी विन करना शुरू कर दिया, मैंने सीखने को बहुत कुछ मिला, ऊपर से फिर उसी 3D एनिमेशंस के स्किल यूज़ करके मैं अर्निंग भी कर लेता था। तो माशाल्लाह इस तरह फिर मेरा रोबोटिक्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ प्रैक्टिकल साइड मेरी बहुत अच्छी होती गई, और थ्योरेटिकल पार्ट में मैं माशाल्लाह वैसे ही कमज़ोर था, उसको मैंने जरिए खास घास नहीं डाली। तो वो मेरी CGPA बस 2.9, 2.8, फिर 3, फिर 2.6 इस तरह चलती रही, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन प्रैक्टिकली माशाल्लाह फिर ये हुआ कि मैं अपने जो कॉम्पिटिशन्स है वो मैंने विन करना शुरू कर दिए। फिर 2011 में माशाल्लाह एक कॉम्पिटिशन आया फास्ट यूनिवर्सिटी में, और बेसिकली उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो ना सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी वाले थे, उसके ऑर्गेनाइजर्स में इंडिया के भी एक यूनिवर्सिटी है IIT बॉम्बे, वो वहाँ की मेरे ख्याल से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। उन्होंने फास्ट वालों के साथ कोई कोलेब्रेशन की हुई थी कि वो ऑल ओवर पाकिस्तान एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाएं, नेशनल रोबो लीग 2011 में हुई थी अक्टूबर या सितंबर में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और सिंध बलोचिस्तान में माशाल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी उस कॉम्पिटिशन में। और वो जो मैंने रोबोट वगैरह बनाया था डेट वॉज जस्ट अ सिंपल लाइन फॉलोइंग रोबोट एंड नथिंग एल्स, लेकिन 2011 में लाइन फॉलोइंग रोबोट भी बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में, ये 9 years बैक बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस वक्त मैंने वो कॉम्पिटिशन विन किया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि फिर हम लोग के जो पूरे पाकिस्तान के जो टॉप 4, एक तो 2 विनर्स हो गए और 2 जो रनर्स अप थे उन चारों को इंडिया में इन्वाइट किया गया, और फिर मैं 2012 में पाकिस्तान को और PF किट को रिप्रेजेंट करने इंडिया गया मुंबई में, और IIT बॉम्बे में हमने वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ रोबोटिक्स में कम्पीट किया। और वहाँ से जब मैं वापस आया, 6 to 7 days का ट्रिप था, तो जब मैं वापस आया मैंने ये सोचा कि यार यही जो मेरी नॉलेज मैंने सीखा पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया जाके, उस सबको मैं एक जगह मर्ज करूँ और अपने स्टूडेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र करूँ। और उसी वक्त ऐसा हुआ था शहरी भी मेरे ख्याल से, जब मैंने रोबो क्वेस्ट 1 कराया था तो शहरी भी वन ऑफ दो स्टूडेंट था, पता नहीं फैजान तुम भी थे या नहीं थे, लेकिन फिर मैंने पाकिस्तान कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल से मैंने शुरू करवाया था,
मैं रोबो क्वेस्ट 1 का विनर था,
और ये विनर था, और मैं इसके रनर अप था, मैं कंपटीशन में इसके अगेंस्ट था उसी कंपटीशन में।
अब सॉरी मुझे याद ही नहीं है कि विनर कौन था।
अच्छा मेरा पार्टनर भी था मेरे साथ, रेहान नाम था उसका, शायद वो देख रहा है, रेहान तुम देख रहे हो तो मैं तुम्हें मेंशन कर रहा हूं।
मैं यहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको थोड़ा सा ड्रॉप करके इंटरेस्टिंग स्टोरी शो करूंगा।
अच्छा जरूर बताओ।
हमने करवाया, अब वो कंपटीशन में शेरी और मैं फाइनल में, अब शेरी जो है वो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट और मैं फोर्थ सेमेस्टर का,
मैं फर्स्ट सेमेस्टर का था
और मैं उस वक्त शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में था। तो अब शेरी साहब पहुंच गए, मैंने बोला यार पता नहीं कौन बच्चे खेल रहे हैं। अब शेरी ने रखा अपना रिपोर्ट तो ज़बरदस्त चले, अब मैं बोलो मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये तो मेरे रिपोर्ट को बीट कर देगा, लेकिन ये वो कैसा करना हुआ कि एंड में मैं जीत गया। अब शेरी साहब आए सलाम करने मुझसे ना मेरे शेरी को, उस वक्त वो पहला इंटरेक्शन था मेरा शेरी के साथ कि इसने आया सलाम किया, कंग्रेचुलेशन बोला मुझे,
साजे भाई कह रहे मैं भी वहाँ था,
तो मुझसे जो है ना हेल्प ले लेना, कोई मसला नहीं है, तुमने बड़ी अच्छी एफर्ट की, तुम अभी जूनियर सेमेस्टर में हो और फिर भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट तुम्हारा चला, तो एप्रिसिएशन देखिए, तो हम तो साइड में होगा, उसके बाद ऐसा करना होगा कि हमारी दोस्ती कि अब यहाँ पर हम दोनों साथ हैं, तो ये पूरी हमारी कि हम मिले कैसे थे, हम मिला आपके रोबो को।
लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि वो जो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम होता है ना, आप मतलब आप अपने पेरेंट्स को शो कर रहे होते हो कि यार आप कुछ कर रहे हो, उस वक्त आप इंजीनियरिंग की नई नई रंगीनियां देख रहे होते हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो आप ख्वाब देख रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा कुछ तो आता नहीं था, और आपने वर्कशॉप में जो सिखाया वो करते 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 बस वो रोबोट इतना अच्छा बन गया। तो जब वो रनर अप का सर्टिफिकेट लेके मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने ना उसी वक्त ही मुझे इंजीनियर डिक्लेयर कर दिया।
जो
या कंटिन्यू करेंगे
जी बिलाल भाई बोले।
जबरदस्त यार वो मोमेंट, बड़ा प्राइड वाला मोमेंट होगा।
हाँ तो बस वो अब वहीं से कहानी शुरू हुई थी टेक्नोलॉजी की मेरी।
मैं ये कह रहा था कि जब मैं इस चीज को स्टार्ट किया था ना मैंने, और तुम लोग को याद होगा कि उस वक्त आर्डिनो कुछ भी नहीं था, पिक माइक्रो कंट्रोलर, पिक 16 F877 जमानी याद है, तो उस वक्त ये सीन हुआ था कि मुझे इतना ज़्यादा अपोज किया गया था कि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स या थर्ड इवन के थर्ड वालों को भी आप माइक्रो कंट्रोलर क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि एमबीबीएस कह रहा हूँ एमएमबीएस का जो कोर्स होता था वो, या विषय मिस्टेक होती है, एमबीबीएस बोल देते थे एमएमबीएस को, तो उसका जो कोर्स है वो फोर्थ सेमेस्टर में आता है एंड यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स पिक माइक्रो कंट्रोलर इन द फर्स्ट सेमेस्टर। मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आता था तो, लेकिन इससे मैं उनको ये पॉजिटिविटी बताता था कि भाई आप सोच नहीं सकते कि बच्चे की बेस कितनी स्ट्रांग बन रही है पहले सेमेस्टर से ही, वरना वो फर्स्ट सेमेस्टर में रिलेज भी मुश्किल से ट्रांजिस्टर भी नहीं सिखा रहे होते थे, इतना कोई हाई है वो तो था नहीं। लेकिन मैंने ये नोट किया था कि रोबो क्वेस्ट जब मैंने करवाया तो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से ही, जैसे तुम लोग थे, काफ़ी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से सीखे। तो तुम लोग समझते हो कि ये चीज़ के गलत थी उस टाइम कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले को माइक्रो कंट्रोलर सिखाया?
अच्छा, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन आ गया। खैर, मैं बस का जवाब देना चाहूँगा, मेरे ख्याल से कोई लिमिटेशन नहीं है इस चीज़ की कि आप किस चीज़ को किस वक्त सिखा रहे हैं। अब वो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और किसी को रोकना नहीं चाहिए। अब जिसका जैसे हमारा इंटरेस्ट था, हम लोगों ने किया, हम लोग अब वो हम शुरू से ही माइक्रो कंट्रोलर पहले सेमेस्टर से करना स्टार्ट हो गए थे, और जब हम माइक्रो कंट्रोलर के कोर्स में आए तो हमने उसको और इन डेप्थ जो है उसको एक्सप्लोर किया। वो जो नॉलेज हमारी एक क्यूरियोसिटी बनकर आई थी पीछे से कि यार ये चल कैसे रही है चीज़ें, मैं यहाँ से प्रोग्राम लिखता हूँ वहाँ से आउटपुट ऑन हो जाता है, क्या चल क्या रहा है उसके पीछे।
तो फिर ये तो वो वाली बातें कर रहे हो, यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना
निकलेगा।
जब हमने एम एम बी एस का कोर्स पढ़ा तो वो चीज़ें जब मेरे सामने आई तो वो अब मैं कभी भूल नहीं सकता कि किस तरीके से जो ये चीज़ें चलती हैं। तो और वही बेस लेके फिर हम आ गया है और फिर आगे और कंपटीशन खेले हमने और कीट का नाम रोशन किया।
यार इवन के मैं अभी मैं रिसेंटली एक बात बताऊँ, मैं एविएशन इंस्टीट्यूट का जब टीचर था तो मैं स्टूडेंट्स को आर्डिनो सिखा के मैं इनको दोबारा रोबोटिक्स की तरफ लेके गया कि कम से कम उन स्टूडेंट्स को ये तो आए। तो मैं जब कीट गया तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह अभी तक अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि वो पहचानते भी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के रोबोट्स इस कदर इम्प्रेसिव थे कि मैं उनसे पूछने पे मजबूर हो गया, यार ये आप मुझे सिखाओ, ये आपने किस तरह बनाया? तो वो कह रहे सर हम आपको सिखाएं। तो मैं कहता यार क्या हो गया, मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो 2012-11 के ज़माने की थी और अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे सेंसर्स या ऐसे ऐसे मोटर्स का नाम बता रहा था, मैंने नहीं सुना हुआ था। बट मैंने उसको बोला यार ये आप मुझे नाम बताओ और सिखाओ भी कि आप किस तरह चला रहे हो, और मैंने स्टूडेंट से भी सीखा। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि अल्लाह का शुक्र है रोबोटिक्स कीट की बहुत हाई लेवल पे अब चली गई भी है, और आई थिंक कि उनको दोबारा ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं स्टूडेंट्स रोबोटिक्स के हिसाब से।
एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा कि जो लोग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सुन रहे हैं हमें, वो ज़रा देखें इस चीज़ को, ये कीट की लेगेसी रही है, हम लोग लेगेसी हैं कीट की और हम लोगों ने काफ़ी कॉम्पिटिशन जीते हैं, तो अब वो स्पार्क जो है वो दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा और जो हमारी लेगेसी उसको आप लोगों को लेके चलना है। और जो टीचर्स सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट की जाएँ एटलीस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लोग जो हैं वो दोबारा से रोबोटिक्स की तरफ आए। तो बिलाल भाई, मैं फिर इसको दोबारा से ज़रा आगे की तरफ लेके चलूँगा कि आपकी जो फिर एविएशन वाली साइड है और फिर जो आपके स्टार्टअप्स थे, ज़रूरी नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप हो, कोई भी चीज़ जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टअप ही कहलाता है। तो फिर उसके बाद जो आपने अपने स्टार्टअप्स के अंदर वो एलिमेंट डाला, वो तमाम चीज़ें जो है ना मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप डिस्कस करें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले उससे।
अब मैं उस टॉपिक पे जो हमारा मेन टॉपिक है स्टार्टअप्स की उसकी तरफ जाता हूँ कि हुआ क्या बेसिकली। तो जब कीट कंप्लीट हुई उसके बाद मैं 2 ईयर्स के लिए एविएशन की पढ़ाई के लिए चला गया, और एविएशन की पढ़ाई कंप्लीट होती व्हेन आई केम बैक टू कराची, तो उस वक्त मुझे रोबोटिक्स की एक वर्कशॉप की ऑफर आई फ्रॉम IOBM, और IOBM में मैं जब पढ़ा रहा था तो साथ साथ CV दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मैं CV का करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि यार जो CVs देने का जो प्रोसीजर होता है, काइंडली अगर 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मुझसे सुन रहे हैं या वो, काइंडली अपनी CVs जो है ना लास्ट सेमेस्टर से ऑलमोस्ट रेडी रख लिया करें, ठीक है। ये सीरियसली बात हमें पहले नहीं समझ में आती थी, उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी CVs को उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, और इतनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि मैं आपको एक बात बताऊं, सीरियसली आप पर डे 25-30 जॉब्स लाजमी अप्लाई करें।
यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा, इतनी डिस्ट्रीब्यूट करो कि जब तुम समोसा खा रहे हो ना तो तुम्हारी CV पे ही रखा हुआ वो।
बिल्कुल सही बात की है भाई, आपकी CV वायरल हो जानी चाहिए, वायरल कर दो अपनी CV को। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक बार अभी चूँकि अभी आलूमिया मेरा जो स्टार्टअप था उसकी बात होगी, लेकिन मैं अपने आलूमिया में चिप्स ही बेच रहा था, तो इत्तफाक से एक बच्चा आया, पीएफ किट का जूनियर था.
अच्छा अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आलूमिया वाला हम जो है ना दोबारा कंटिन्यू करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी. तो
हाँ, तो मैं ये सीवी वाला पार्ट उसमें से बताना चाह रहा हूँ.
अच्छा अच्छा सही.
बच्चा आया था चिप्स खरीदते हुए, मुझे पहचानता था वो, तो बोलता है कि बिलाल भाई मैं बड़ा ना अपसेट हो गया हूँ. तो मैंने कहा क्यों अपसेट हो गया? कहता है मैंने बहुत सीवीज डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जॉब नहीं लग रही. मैंने कहा यार कितनी कर दी हैं? 600-700 कर दी हैं, 800 कर दी हैं. मैं तो दिल में पहले सोचा. कहते बिलाल भाई मैंने 7 CVs डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 7 CVs, और मुझे कहीं से भी जवाब नहीं आया. मैं अपसेट हो गया हूँ.
वो 60 बोल रहा
मैं उस टाइम लिटरली, एक एग्जांपल मैं नहीं बता सकता. नहीं उसने 7 बोला था, और मैंने जो उसको रिप्लाई में बोला था वो बाद में यहाँ ऑन एयर नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि मैंने उसको यही एग्जाम्पल दी थी कि कम से कम अपनी CVs इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि ब्ला ब्ला ब्ला, वो फिर मैं आगे नहीं बोल सकता. तो बहरहाल मैंने उसको बोला था कि भाई आप अपनी, अगर मजाक से हट के भी बात की जाए तो आप पर डे 20-30 CVs लाजमी ड्रॉप करो, चाहे आपको रेडी वाले को भी देनी पड़ जाए, लेकिन आपकी CV आपकी पॉकेट में होनी चाहिए, आपके मोबाइल के PDF में होनी चाहिए. मतलब हर वक्त आप डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर जाके कोई एक कॉल आएगी आफ्टर मेरे ख्याल से 150 या 200 CVs देने के बाद, शायद वो भी ना, लेकिन उस पर भी आपने अपसेट नहीं होना. अच्छा बारह, तो मैंने CVs डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी थी. शाइन एयरलाइन के गेट पे मैं गया तो चौकीदार तो वही भगा देता है. फिर एयर ब्लू का तो आपको HR मिलेगा ही नहीं, वो है इस्लामाबाद में. मतलब इस तरह मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो इत्तफाक से फिर कहीं ना कहीं से CVs पहुंच ही जाती है कहीं ना कहीं. तो बहरहाल फिर मुझे 2015 के रमज़ान में ही शाइन एयरलाइन से कॉल आई थी. फिर मैं अलहमद उसके इंटरव्यू के लिए, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, वो एक अलग टॉपिक है. बहरहाल मैं शाइन एयरलाइन 2015 की जुलाई में अलहमदा ज्वाइन किया. फिर शाइन एयर में चलते रहे. फिर मैंने मेंटेनेंस अपना एक्सपीरियंस पूरा किया. उस दौरान अब 2007 आ गया. अब मैं अपने सबसे पहले स्टार्टअप वाली बात पे लेके जाऊंगा कि मैंने सबसे पहले अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया. ये काफ़ी लोग जो सुन रहे होंगे वो भी इसको एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि अक्सर 4-5 दोस्त अगर चाय पी रहे हो ना तो बिजनेस स्टार्टअप की बात लाजमी होती है कि यार कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यार कोई बिजनेस होना चाहिए, यार जॉब नहीं करनी, गुलामी नहीं होती, चल यार अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. 110% आई एम श्योर कि ये बात ज़रूर होती है, और ये इसीलिए होती है क्योंकि सबको पता है कि यार जॉब हर किसी के पास की बात नहीं है. ठीक है, बिजनेस भी हर किसी के पास की बात नहीं है, लेकिन कम से कम जॉब उनको गुलामी लगती है, और जॉब मिले ना मिले वो एक अलग बात है. अच्छा, मेरे जहन में इस तरह आया कि हम भी शाहीन एयरलाइन का जो मेस था जहाँ पे हम चाय पीते थे, हम भी यही डिस्कस कर रहे होते थे. रोज़ाना एक नया बिजनेस खड़ा करते थे, ऊपर तक जाता था, फिर चाय ख़त्म होती थी, ऑफिस पे चले जाते थे, फिर ख़त्म, फिर नेक्स्ट डे इस तरह होता था. मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता था, मैं करके भी दिखाता था. तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे एक आइडिया देना चाहूँगा जो मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन सबसे पहले जो मेरे पास बेसिक आइडिया है, ये मैंने आज तक किसी को बताया भी नहीं कभी भी, वो ये आया था कि हम 3 दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने डिस्कस ये हुआ था कि जिस तरह पाकिस्तान में हफ्ता बाजार इतवार बाजार लगता है और बहुत बहुत आवाम आती है वहाँ पर, तो हमने सोचा था कि सबसे पहले वहाँ पर बिरयानी या कोई कुछ भी बेचना शुरू करते हैं खाने पीने का. एक छोटा सा टेबल पर ले लेंगे किराए पे और किसी भी हफ्ता बाजार में स्टार्टअप लेते हैं. भाई बिजनेस है ना, शर्मिंदगी की बात क्या है कि आप एक रेडी पे बिरयानी बेचो. तो ये सबसे पहली बेसिक चीज़ थी. तो जो मेरे साथ 2 बंदे थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया. मैं फिर भी गया हफ्ता बाजार, जो नियरेस्ट मेरा हफ्ता बाजार था सबसे बड़ा. मैंने उधर जाके उसके जो ऑर्गेनाइज़र था उससे बात भी कर ली थी, और मैंने उसको बोल भी दिया था, मैंने अपनी तरफ से सारा काम अपना कर लिया था कि मुझे कितने की टेबल मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस एरिया में मिलेगी, रात में कब बंद करना है. मतलब मैंने अपने एंड पे सारा काम कर लिया था. वो जो 2 नमूने थे मेरे साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो वो स्टार्टअप वहीं पे ही एंड हो गया. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बातें करते करते एक पूरा का पूरा बिजनेस आइडिया दे गया हूँ कि आप अपना स्टार्टअप कुछ भी लेना चाहते हो, आप हफ्ता एतवार बाजार से स्टार्ट तो करो. एक्सपीरियंस के लिए आपको छोटा मोटा कुछ करना ही पड़ेगा.
यहाँ मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा बिलाल भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ.
कोई मसले वाली बात नहीं, बोलो.
एक बात ये होती है कि आप अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हो ना, तो आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसमें किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जो करंटली गोइंग ऑन टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट में अवेलेबल है. शायद माया इस पर कुछ ऐड करना चाह रहा है.
एक चीज और यहाँ पर बताऊंगा कि चूज योर पार्टनर वाइजली, ये जो होता है ना स्टार्टअप का एक प्रिंसिपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया वो 2 जो है वो नमूने थे, उन्होंने इनको छोड़ दिया. तो भी स्टार्टअप,
लेकिन पता है
स्टार्टअप पार्टनर चूज करना
बिल्कुल
क्रिटिकल
होता है। तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, कुछ दोस्त या कुछ पार्टनर्स तुम्हें इतने ज़बरदस्त लगेंगे, लेकिन जब तक तुम एक चीज़ में घुसोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा यार ये तो बड़ी बातें कर रहा था, अब तो ये इसकी जान निकल गई, तो ये तुम्हें भी बाद में पता चलता है। लेकिन सबसे अच्छी टिप मैं एक और दूंगा, जितना छोटा बिजनेस, जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट, उतना छोटा नुकसान, उतना ही छोटा फ़ायदा, लेकिन एक्सपीरियंस बे इंतहा, मतलब लिमिटलेस। ठीक है, आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप उसके बाद अगला स्टार्टअप बहुत अच्छा करोगे। तो सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मुझे पता चल गया था कि अगर मुझे हफ्ते इतवार बाजार में कुछ सेटअप डालना है तो वो किससे बात करनी है, कि उसके रेट क्या होते हैं, टाइमिंग्स क्या होती हैं, टर्नओवर कितना आता है, और मेरे कॉम्पिटिटर्स बिरयानी के वहाँ पे कितने बैठे बैठे, क्योंकि बाकी अक्सर लोग चाट वाट भी बेच रहे होते हैं बारह। तो जब दोनों लड़के पीछे हट गए, वो बिजनेस वहीं पर मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो वही उसी तरह चाय शुरू हुई, चाय ख़त्म हुई, बिजनेस ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने एक मॉडल कॉलोनी, अगर तुम लोग जब कराची या पाकिस्तान में रहते थे तुम्हें पता होगा कराची में मॉडल कॉलोनी एक जगह है, तो उधर काजमाबाद का एक एरिया जहाँ पे रिसेंटली हमारा एक एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ PIA का, उसी जहाँ पे वो क्रैश हुआ उससे अगली गली में उसने एक छोटा सा स्टार्टअप दिया, और उसने वो बिरयानी वाला वहाँ पे बिठाया। खुद वो मेरे साथ शाइनियर में था, लेकिन उसने पीठ पीछे एक बिरयानी वाला बिठा दिया था एक जगह पे, तो वो वहाँ पे बने बनाए ठिए पे स्टॉल पे वहाँ पे वो बिरयानी बेचता था। और एक दिन उसने बेची, दूसरे दिन उसने बोला यार मुझे नुकसान हो रहा है, मैं अब अगले हफ्ते बेचूंगा, अभी मैंने छोड़ दिए। ये इसने मुझसे डिस्कस ही किया था, तो मैंने उससे पूछा कि यार वो जगह खाली है? कहता हाँ खाली है। कहता तुमने क्या करना है? मैंने कहा यार मैं चिप्स बेचूँ। कहता है बेच ले भाई। मैंने कहा बस ठीक है, उसको कितना किराया देना है बेकरी वाले को? वो कहता है यार 200 रुपीज़ में बात हुई है, मैं तो बिरयानी अगले हफ्ते लगाऊंगा, मंडे से फ्राइडे तुम चिप्स बेच लो, चल रहा हुआ तो चला लेना। ये बस बातें करते करते शाहीन में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने घर पे कॉल की, मैंने बोला भाई घर में कितने आलू पड़े हैं? उन्होंने भाई 1-2 किलो पड़े होंगे। मैंने कहा पकाओ इसको, रेडी करो। उसके बाद फिर मैंने हरी प्याज, शिमला मिर्च, घर आते आते 1-2 मायनीस पकड़ी, केचप पकड़ा, सारी चीज़ें ना गाड़ी में डाली, वहाँ पे चला गया। उस बेकरी वाले से पहले ही सेटिंग हो गई थी कि हाँ भाई आज कोई और लड़का आएगा। चूल्हा भी मैंने उसी से ले लिया जिसकी बिरयानी बिक रही थी, सिलेंडर भी उसका ले लिया, कढ़ाई मैंने अपने घर की पकड़ी, और लिटरली मैं वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था अपने यूनिफॉर्म की, मैंने बैजेस और अपने एप्लेट्स उतार दिए थे शर्ट बाहर टक आउट करके, और फिर अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर कर ली, कम से कम चिप्स वाला तो लगना चाहिए ना भाई। तो क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में था अपने एविएशन के, यार अजीब सा लगता ना। तो उसके बाद फिर मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो लोग झांक झांक के देख रहे हैं ये कर क्या रहे, और मैं घर की कढ़ाई के अंदर ना चम्मच मार रहा होता था तेल के अंदर, और आलू डाल के उसके अंदर, भाई गरम तेल में आप आलू डालो खुद ही पक जाते हैं, वही चिप्स होता है भाई, उसके बाद वही चिप्स है और मैं वही बेच रहा था, और लोग झाक झाक के देख रहे हैं ये घर की कढ़ाई, मतलब अजीब सा लगे ना, तुम घर की कढ़ाई लेके बेकरी के बाहर खड़े हो जाओ तो वो लोग तो देखेंगे यार ये बेच क्या है। ये मेरा स्टार्टअप हुआ था, और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 600 रुपीज की बस, उसमें से 200 मैंने बेकरी वाले को दिए थे, 1-2 किलो के चिप्स जो मैंने आलू घर से लिए थे उनको पेमेंट की थी, केचप पकड़ा नेशनल या किसी भी ब्रांड का, मायोनीज कुछ भी पकड़ा, सब्जी वब्जी डाली, चिप्स पकड़े, केचप डाला, मायो डाली, सब्जी छड़की, लो भाई बेचना शुरू। और मैंने शुरू में किस में बेचे, पेप्सी का गिलास होता है ना, पेप्सी के गिलास के अंदर मैं चिप्स बेच रहा था, मैंने यहाँ से स्टार्टअप लिया था। और लिटरली 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, फिर मुझे समझ आया नहीं यार गत्ते की वेलकम वाली हमारी प्लेट होती है ना लोकल गत्ते वाली, फिर मैं वो परचेज करके लाया, टूथपिक लेकर आया। यहाँ पे मैंने थोड़ी इनोवेशंस की, जो चीज़ दूसरे चिप्स वाले नहीं करते थे वो तो तुम्हें गंदी से डिबिया में डाल के दे देता है, मैंने उसको थोड़ी प्रॉपर प्लेट ली, टूथपिक लिया और उसको एक डिफरेंट तरीके से सर्व करना शुरू कर दिया। लिटरली मैं वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में होता था, और अब मेरी टाइमिंग क्या थी, मैं 9 to 6 मैं शाइनियर में 9 to 6 काम करता था, और 6 PM के बाद मैं फ़ौरन भागता हुआ जाता था उस स्टॉल पे बेकरी के सामने अगर, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे करता ये था कि जब मेरे पहले चिप्स की रेडी हो जाती थी कढ़ाई, तो मैं उसको एक प्लेट में डाल के मायो केचप और वेजिटेबल उसके ऊपर छिड़क के 10-15 टूथपिक लगाता था, और उसको ले लेके मैं लोगों के पीछे पीछे जाता था, वो स्टॉल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मैं गली के कॉर्नर तक चला गया आगे तक, सर आप ये ट्राई करें, सर ये ट्राई करें, सर ये ट्राई करें, वो टूथपिक लेके उसको बाइट मारते थे। अगर मैं 10 को भी ट्राई करवाता था ना, उसमें से 3 कस्टमर वापस आके बोलते थे यार ये कितने का है, मैं कहता था 30 का, तो कहते थे यार ये दो मुझे, फिर मैं उनको पेप्सी के गिलास में सर्व करता था। मेरी विद इन वन वीक भी क्या, उससे भी कम टाइम पे मैं ब्रेक इवन पे था। ब्रेक इवन ही कितना था, 500 रुपये की तो इन्वेस्टमेंट थी, रोज़ाना 500 रुपये खर्च करता था, और फिर वो 500 रुपये विद इन वन वीक वापस आना शुरू हो गए। भाई आलू का बिजनेस इतना ज़बरदस्त है, वो हर कोई खाता है, आप खुद भी खाते रहोगे बनाते हुए, इतना मज़े का होता है। और फिर जब आप उसमें अपनी सॉसेस डालोगे, अपने लवाजमात डालोगे, गंदी चटनियाँ डालोगे, फिर तो वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उंगलियाँ चाटोगे। हर तरह की चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आप एक बार जाओ तो सही। फिर हुआ ये कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डे आया, भाई 500 खर्च किए थे, 800 रुपये वापस आ गए, 300 रुपये प्रॉफिट किसको बुरा लगता है सातवें दिन पे। फिर वो 1000 रुपये वापस आ गया, फिर 1200 रुपये आ गया, फिर भाई लिटरली मेरी 3 वीक्स के अंदर या 2 वीक्स के अंदर मेरी एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई हो गई, और उसके बाद एक चूल्हे से दूसरा चूल्हा, और वो दोस्त जिसने बिरयानी की जगह ली थी उसको मैंने बोला अल्लाह हाफिज़, ये मेरी जगह हो गई, आप अपनी बिरयानी कहीं और लगाएं। और वो मेरा बहुत नाइस फ्रेंड था, तलहा मलिक उसका नाम था, और उसके बाद वो जगह पे मैंने 8 महीने तक अपनी घर की कढ़ाई पे, घर के चूल्हे पे, घर के सिलेंडर पे, छोटा सा सिलेंडर 5 kg का, उस पे मैंने चिप्स बेची और 8 महीने तक बेची, और मैंने उसको मार्केट नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि मैं शाइन एयरलाइन में ट्रेनिंग इंजीनियर था, ग्रुप 5 मेरा वहाँ पे ग्रुप था। और उसके बाद अगर मैं किसी को बताता कि भाई मैं 6 बजे के बाद रेडी पे चिप्स बेचता हूँ, तो वो थोड़ा सा किसी को भी वियर्ड लग सकता था। लिटरली मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, ठीक है, कंपनी की तरफ से फ्यूल भी फ्री था, टिकट्स भी फ्री थे, और आई डोंट थिंक कि कोई शख्स इस टाइप का या इस लेवल पे रेडी लगा सकता है, तो मैं इसलिए बताता भी नहीं था। लेकिन वो रेडी लगाने का मकसद, मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए थी, मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा था, और वो मैंने निकालना था, कि मैंने अपना स्टार्टअप देखना था कि मैं किस तरह आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने इन 8 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे जमा कर लिए थे, मैं सिर्फ आपको एक अपने मंथ की सेल बताता हूँ, मेरी सेल 3 लाख से ज़्यादा थी, सेल की बात कर रहा हूँ। इस 3 लाख की सेल में मेरा जो प्रॉफिट था वो 30-35,000 प्रॉफिट था, जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी एविएशन से वैसे ही ठीक ठाक कमा रहा था। तो मेरी 3 लाख की सेल भी गई है, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये हुआ कि जब शाहीन एयरलाइन के हालात ख़राब हुए जुलाई के एंड 2018 में, जब उसने हमारी सैलरीज देना बंद कर दी, तो मैं अपने आलू के जो बिज़नेस है उससे इतना कमा चुका था कि मैंने अपनी फ़ास्ट फूड की मशीन के ऑर्डर दे दिए हुए थे, तो वो फ़ास्ट फूड की मशीनरीज उस वक्त 1.25 लाख की थी, फिर वो मैंने ख़रीदी, उसमें बड़े बड़े बॉयलर्स, बॉयलर्स कह रहा हूँ, फ्रायर्स थे उसके अंदर, फिर उसका एक अपना डोइन हॉट प्लेट भी कहलाती है, फिर उसके अंदर सिजलर भी कहलाता है। ये जब आप ख़रीदेंगे आपको समझ में आएंगी, इसके डिफरेंट डिफरेंट शशके होते हैं, मगर तो पूरा एक मैंने सेटअप परचेज करके, और जिस जगह पे मैं खड़ा होता था काजमाबाद पे, उसी के साथ वाली दुकान कॉर्नर की मुझे मिल गई थी। और फिर मैंने जब वो दुकान ली तो मुझे बाकायदा फ़ास्ट फूड का नाम रखना पड़ा, फिर मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा नाम दिया और उसका नाम मैंने रखा आलूमिया। अगर आप मॉडल कॉलोनी में काजमाबाद के ऊपर बिल्कुल रनवे के सामने अगर अभी भी गूगल मैप से खोलेंगे तो आपको आलूमिया नज़र आएगा, वहाँ पे अभी भी उसका नाम आलूमिया ही उस जगह का, जबकि वहाँ पे अब तो स्टेट एजेंसी खुल गई है, 1.5-2 साल हो गए मुझे बंद किए हुए। तो जब शाहीन एयरलाइन अपनी क्लोज हो रही थी, मैं अपने बिजनेस से इतना कमा चुका था कि मैं अपना फास्ट फूड खोल चुका था, और लिटरली जब शाहीन एयरलाइन टोटल बंद हुई, नो सैलरीज नथिंग, तो मैं अपनी सैलरी से ज़्यादा अपने फास्ट फूड से अर्न कर रहा था।
मतलब आपके पास जो है एक चीज़ ऑलरेडी रेडी थी, मतलब एक ये एक इसको किस तरह से मैं कंक्लूड करूं कि आपके पास एक साइट थी, आप पहले से सोच रहे थे, आपने शायद इस वजह से नहीं सोचा हो कि आपका मतलब कोई ब्रेक इवन आ जाएगा और आप कामयाब भी कर लेंगे और आपका एक साइड बिजनेस भी चल जाएगा, लेकिन फोरसाइटनेस आपकी इतनी थी कि एक अपना एक बिजनेस साइड में होना चाहिए।
और शाहीन एयरलाइन बंद होने का कोई सोच भी नहीं सकता था, शाहीन एयरलाइन 1 महीने के अंदर अंदर वाइल्ड अप हुई है, ठीक है। और जब मैं अपने फास्ट फूड खोल के बैठ के माशाल्लाह कमा रहा था, तो पूरी शाहीन एयर में वैसे ये बात वायरल हो चुकी थी कि भाई बिलाल पट्टी जो है वो फास्ट फूड चला रहा है। लेकिन जब वो लोग मेरे पास आते थे और मुझे कहते थे भाई आपने किस तरह स्टार्टअप ले लिया ये वो, तो मैं उनको बोलता था भाई वो मेरा स्टॉल पड़ा हुआ है, मेरा स्टार्टअप वो था, आप पहले उस पे 8 महीने चिप्स बेचो, फिर मेरे पास आना फास्ट फूड खुलवाने के लिए या टिप्स लेने के लिए।
लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है ना, आपने अपने ईगो को साइड में रख दिया। मतलब एक टाइम पे आपने एक चीज मेंशन की ना कि हाँ आप लोगों को नहीं बताते थे कि आप मतलब जैसे शाहीन में जो आपके कोलीग्स हैं आप उनको नहीं बता रहे उस वक्त जब आप स्टार्टिंग में हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उनको बता सकते थे, लेकिन फिर भी आपने एक टाइम पे आके उनको बताया, अपने ईगो को साइड में रखा कि हाँ यार मैं भी ये कर सकता हूँ। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है हमारी यूथ के लिए कि यार अगर देखो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हारा जो है जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी या जॉब जहाँ कर रहे हो वो खत्म होने वाली है। जैसे अब ये पेंडेमिक में आजकल क्या हो रहा है, सब बहुत अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले मतलब जिनकी लाखों सैलरीज थी वो एकदम से घर बैठ गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो सोच रहे हैं और इवन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। हाँ माया तुम यहाँ कुछ ऐड करना चाह रहे हो?
मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर लोग सिर्फ जो हैं वो बिलाल भाई को सुनने आए, आज सिर्फ बिलाल भाई बात करेंगे और कोई बात नहीं करेगा।
नहीं यार कंटिन्यूएशन में तो मैं सवाल तो पूछना बनता है ना यार।
नहीं सही है, असल में मैं ये भी बताऊं कि जिस वक्त मैं रेडी पे चिप्स बेच रहा था, ये शेयर ही तुम्हारे ईगो वाले पॉइंट को ही मैं कंटिन्यू करूंगा कि भाई जब मैं रेडी पे चिप्स बेच रहा था, आप अपनी जगह, ये मैं यंग स्टूडेंट्स या यंग जूनियर्स को बोल रहा हूँ या यंग ग्रेजुएट्स को बोल रहा हूँ कि मैं उस वक्त बी इलेक्ट्रॉनिक्स भी था और मैं थोड़ा सा मशहूर भी था, रोबोटिक्स के हवाले से मैंने काफ़ी काम किया हुआ था, और दूसरा मैं शाइन एयरलाइन में ट्रेनिंग इंजीनियर भी था और मैं 3D एनिमेटर भी था। तो भाई, और मैंने बार बार ये बात रिपीट की कि मुझे ज़रूरत नहीं थी पैसों की। अगर मैं उस टाइम पे अगर रेडी पे चिप्स बेच सकता था, तो इस वक्त अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो यार आप क्यों छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचना कि आप हक हलाल का कमा रहे हो, सबसे बड़ी बात। और आप यकीन करो उस कमाई में जो मजा था वो शायद शाइनियर की सैलरी में भी वो मजा नहीं था, थी वो भी हलाल, लेकिन इस पे जब आप आलू के घर में खुद आलू काटोगे, सब्जियां खुद काटोगे और फिर उसको फ्राई करके बेचोगे ना, तो उसका बहुत अलग ही मजा है। वो मैं इस तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वर्ड्स में कि वो एक अलग ही चीज थी। तो फिर मेरा आलूमिया खुला और आलूमिया खुलने के बाद मैंने ठीक ठाक कमाया भी। फिर लोग अक्सर यही सोचते हैं कि जब आलूमिया इतना हिट था, माशाल्लाह चल भी रहा था, तो ये बंद क्यों हुआ? उसके बाद 2018 में ही बेसिकली आपके इलेक्शन, सबसे मशहूर इलेक्शन जो हुए जिसमें PTI जीती, तो जब इलेक्शन हुए उसके बाद अक्सर लोगों से 2018 में ये बात लोगों ने सुनी होगी कि बिजनेस नहीं चल रहा आजकल। उस वक्त खासतौर पर यह ज़रूर चला था, बिजनेस तो खैर आजकल भी नहीं चल रहे, लेकिन उस वक्त ये शुरुआत हुई थी, लोगों ने बोलना शुरू किया था बिजनेस नहीं चल रहे, लोगों की जो कहते हैं ना जेब जो है वो इतनी नहीं रही कि अब वो खरीद सके, जिसको बाइंग पावर कहते हैं। तो जिस जगह पे मैंने ये शॉप खरीदी भी थी वहाँ के लोगों की बाइंग पावर इतनी नहीं थी कि वो मेरे चिप्स अफोर्ड कर सकें, क्योंकि मेरी क्वालिटी बहुत हाई थी। सर मैं क्या बताऊँ आपको कि चूँकि मैं खुद ही, मतलब वही बात है कि थोड़ा अगर एजुकेटेड इंसान होता है वो गंदी केचप और गंदी मायो नहीं यूज़ करेगा, तो मेरे साथ भी वही चीज़ थी, मैं वही चीज़ यूज़ करता था जो मैं खुद खाता था, और इवन के जब कस्टमर आता था मैं उसके सामने खुद ही अपने चिप्स केचप में डुबो के खा रहा होता था, तो इससे वो खुश होता था, उसको पता चलता था कि यार ये तो अपनी चीज़ खा रहा है। आप लिटरली कभी खुद देख लेगा रेडी पे जाके कभी वो अपनी चीज़ खाता है, नोट करना, कभी भी नहीं खाते, ना शवरमा वाला अपना शवरमा खाता है, ना बर्गर वाला अपना बर्गर खा रहा होता है, ठीक है, ना चिप्स वाला अपने चिप्स खा रहा होगा। मैं तो लिटरली रोज़ खाता था भाई, मुझे बाद में पता चला वो क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो जो केचप खरीदते थे, मुझे तो एक केचप को पता चल गया था, एक केचप का नाम है बड़ा मशहूर, प्रोडक्ट का मैं नाम दे रहा हूँ, उसका नाम है सहर, बेसिकली जो फीमेल का नाम होता है सहर ना, तो उसको मैं वैसे ही बोलता था कि जहर केचप, वैसे तो इतना, और वही केचप डाला जाता है इस वक्त पूरे कराची में, सहर केचप यूज होता है, और वो बहुत ही, वो ईंटों का बना हुआ है, पता नहीं किस केमिकल का बना हुआ है। हाँ फैजान बोलो, तुम बोलना चाह रहे हो?
आप कंटिन्यू करें।
तो वो बैक टू द स्टोरी के वो मतलब वो बन क्यों किया, वजह क्या बनी?
हाँ तो भाई मेरी जो सबसे पॉपुलर हिट चीज थी वो थी पिज्जा फ्राइज और बारबेक्यू क्यूब्स, बारबेक्यू के क्यूब्स के अलावा बहुत सारी इस तरह के आइटम, क्योंकि मैं पोटैटोज को सिर्फ स्ट्रेट शेप में नहीं, मैं क्यूब फॉर्म में भी बेचता था, और वो क्यूब फॉर्म में उसकी एक डिफरेंट रेसिपी भी थी, उसके बाद वो और मज़े के हो जाते थे, मतलब ये मेरी यूनिक डिशेज थी। अब ये 20-30 रुपये में नहीं दी जा सकती थी क्योंकि मेरी कॉस्ट नहीं पड़ रही थी, तो 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, मैक्सिमम मेरा पिज़्ज़ा फ्राइज जो इस वक्त आम मार्केट में 200 या 220 का मिल रहा है, मैं 180 का बेचता था। और यही सब चीज़ें जब मेरी बिकती थी तो, और ये मैं खुद पकाता था अपने हाथ से। और उसके बाद फिर मैंने बर्गर भी स्टार्ट करना शुरू किया, खुद ही चिकन पकड़ के उसको कोटिंग करता था और फ्रेश कोटिंग करता था कस्टमर के सामने। और मेरे कुछ कस्टमर इतने परमानेंट बन गए थे क्योंकि उनको पता था मैं हर कस्टमर के ऊपर डिफरेंट ग्लव्स पहनता हूँ, ठीक है, हेयर नेट अलग पहना, मतलब क्वालिटी का स्टैंडर्ड मैंने बहुत बेतहाशा रखा हुआ था। और ये आप बात मानेंगे कि जब आप क्वालिटी का स्टैंडर्ड रखेंगे तो आपकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो मेरे परमानेंट कस्टमर तो थे लेकिन वो इतने कम थे कि मेरा रेंट नहीं निकल पाया। फिर वो सेल आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती रही, लोगों के जो एरिया के लोग थे वो साथ वाली फिर 20-20, 30-30 रुपए की, 10-10 रुपए की चिप्स खाते थे, लेकिन वो मेरे पास आके 50 रुपीस की चिप्स या 80 रुपीस के क्यूब्स वगैरह वो सिर्फ हफ्ते में एक बार खाते थे। इससे मेरी कॉस्ट नहीं निकल सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बिज़नेस इतना सक्सेसफुल था कि मैंने अपने नीचे फिर दो वर्कर्स भी रखे हुए थे भाई, मैं उनकी सैलरीज देता था। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे नज़र आया कि मैं अब ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, प्रॉफिट से ब्रेक इवन पे आ गया हूँ। तो फिर मैंने उनको पहले एक बच्चे को फारिग किया, फिर मैंने दूसरे लड़के को बोला भाई दिस इज़ द लास्ट मंथ, अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह हम डाउन जा रहे मैं शायद अपनी सैलरी ना निकाल पाऊँ तुम लोग की भी, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इससे बेहतर है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको एक फाइनेंशियल इश्यूज ये भी बताना चाहूँगा कि जब शाइन एयरलाइन चल रही थी तो हम लोग को उम्मीद थी कि हमारी सैलरीज मिल जाएंगी लास्ट 5 मंथ। अब ये ऐसे क्राइसिस हैं जो कि शायद इनके साथ भी नहीं हुए होंगे, अब पेंडेमिक में सबको पता है कि हमारी जॉब ख़तरे में है और हम लोग फारिग होने वाले हैं। हमारे साथ शाइन एयरलाइन में ये हुआ था कि हमारी जुलाई से सैलरी बंद हो गई थी और अक्टूबर तक ऑपरेशन रन हुआ होता रहा था और हम लोग को यही लगता था आज सैलरी आएगी, आज सैलरी आएगी, आज कंपनी वापस रिवाइव हो जाएगी क्योंकि शाइन एयरलाइन टॉप पे थी। तो हमारे साथ डबल ट्रेजेडीज हुई थी, एक तो जॉब छीन गई और लास्ट 4-5 मंथ्स की सैलरी नहीं मिली। तो एक बंदा होता है ना वो कहता है यार मेरी इतनी सैलरी है तो मेरे इतने लाख अभी आने, तो वो किसी पर डिपेंडेंट होता है, तो वो डिपेंडेंसी वाले जो पैसे थे कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं आए, उसकी वजह से मैं कर्ज़ों में चला गया। तो मुझे वो दुकान जब छोड़ी तो उसका जो एडवांस वापस मिला उससे मैंने अपने कर्जे उतारे और उसके बाद फिर वो आलूमिया बंद हो गया। फिर मैंने एक एविएशन इंस्टीट्यूट था वहाँ से मुझे एक ऑफ़र थी, मैं उस एविएशन इंस्टीट्यूट को मैं कंटिन्यू करता रहा, वहाँ पर पढ़ाता भी रहा एविएशन के और मैं वहाँ पर कॉरपोरेट मैनेजर का भी काम करता रहा। इवेंचुअली हालात ऐसे हुए कि मुझे वो एविएशन इंस्टीट्यूट भी छोड़ना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि मैं मैम सीमा अंसारी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो हमारी पी एफ किट की फैकल्टी थी। पत्नी तुम दोनों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया डॉक्टर सीमा अंसारी?
नहीं मैंने नहीं पढ़ा।
मैंने भी नहीं पढ़ा।
नहीं पढ़ा, ठीक है। वो मेरी 5th-6th सेमेस्टर की टीचर थी और वो अब आई ओ बी एम में डीन है, आई ओ बी एम सी बी एम में डीन है। उस वक्त जब मैं 2018 में था तो वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो उन्होंने मुझे हेल्प की फैकल्टी बनने के लिए, तो मुझे वहाँ से एक ऑफ़र आई रोबोटिक्स एंड कंट्रोल ऑटोमेशन की विजिटिंग फैकल्टी बनने के लिए। तो वो मैंने फ़ौरन उसको वहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ और वो मैंने ज्वाइन की ओनली फॉर 1 सेमेस्टर और वो विजिटिंग पे रखा। अब विजिटिंग की भी मैं आपको यहाँ पे अपनी किस्मत का बताऊँ कि विजिटिंग इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बैचलर्स या यूनिवर्सिटी का टीचर वही बन सकता है जिसने मास्टर्स किया हुआ, और मेरे पास मास्टर्स नहीं था। और मास्टर्स क्यों नहीं था?
नहीं करता,
कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया हो ना किया हो, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब मेरे पास बैचलर भी था, 5 ईयर एविएशन एक्सपीरियंस भी था, रोबोटिक्स का एक अलग, मैं माशाल्लाह किसी ज़माने में काफ़ी सक्सेसफुल भी रह चुका हूँ, उसके बावजूद मैं विजिटिंग फैकल्टी नहीं बन सकता पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है। और मेरे पास मास्टर्स की डिग्री इसलिए नहीं थी क्योंकि एविएशन में ना बैचलर चाहिए ना मास्टर्स चाहिए, वहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है। तो मेरे पास लाइसेंस भी था और वो भी यूरोपियन एविएशन का यासा लाइसेंस, ठीक है, अब तो यहाँ पे हर बच्चे के पास है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है यासा लेना, पाकिस्तान का ये हाल हो गया, ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा बार, तो फिर मैंने वहाँ पे IOBM में एज अ विजिटिंग फैकल्टी कंट्रोल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स पढ़ाया 2019 में। जब 2019 एंड हुआ तो उस वक्त मैं IOBM भी और अपना एविएशन इंस्टीट्यूट दोनों छोड़ चुका था। और फिर आया 2020 और फिर जब 2020 आया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार एविएशन की जॉब्स तो इस वक्त नहीं आ रही, बहुत अरसा वेट कर लिया, तो दोबारा से लेट्स कम बैक टू आवर बिजनेस जो कि मेरा था आलूमिया वाला। मैंने उसकी दोबारा पूरी की पूरी मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट की, तो जब मार्केटिंग स्टार्ट की और मैं लॉन्च करने ही वाला था और डिफरेंट आइडिया के साथ, मैं आइडिया ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा ताकि जो लड़के हैं वो सीख लें। अब देखो मेरे पास मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मशीन थी जो कि फास्ट फूड की मशीन थी। अब सोचो मैंने क्या आइडिया लिया था, मैंने आइडिया ये लगाया था कि लोगों को खाने पीने से मतलब है, और अब जो कराची का ट्रेंड आ गया है वो घर में बैठ के खाने का ज़्यादा आया है, होम डिलीवरीज का, ठीक है। तो मैंने ये किया था कि मैंने जो मेरा घर है मैंने उसकी छत पे पूरा एक सेटअप किया था मशीन वशीन रख के, और उसी के बाहर मैंने कुर्सियाँ वगैरह रख दी और टेबलें रख दी थी ताकि जो मेरे करीबी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे आके खा सकें, और मैंने फिर डिलीवरी बॉय रखना था ताकि अब मैं अपने घर से ही पूरे ऑल ओवर गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल जितने भी एरियाज हैं उन सब में डिलीवरी स्टार्ट कर दूँ। अब आप यहाँ पे ये आइडिया आप लोग बहुत अच्छा ले सकते हो कि ये स्टार्टअप आप अपने घर में भी ले सकते हो, ना आपको रेंट पे करना है, ना आपको बिजली का बिल पे करना है, गैस के लिए आप सिलेंडर यूज़ करो और अपनी गैस की जो सिलेंडर है वो फिल करा के लाओ, और दूसरा नहीं चलता कोई मसले वाली बात नहीं, बंद कर दो, आपने कौन सा रेंट दिया हुआ है, आपने कौन सा एडवांस देना है, तो आप अपने घर से ही सेटअप एक स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारे इस वक्त होम फूड्स चल भी रहे हैं, लेकिन आप चूँकि लड़के हो तो आप होम फूड्स के बजाय मैं ये चाहूँगा या आपको आइडिया दूंगा कि आप ये पिज़्ज़ा फ्राइज पिज़्ज़ा लज़ानिया इस तरफ लेकर आओ और इसको डिलीवरीज देना स्टार्ट करो, और लिटरली आप आलू के चिप्स कल ही घी में बनाना, ऑयल में नहीं बनाना, आपको ट्राई कर लेना कि कितने टेस्टी बनेंगे। और उस पर सिंपल सी बात है, एक कॉर्नफ्लोर लगाना और घी में पकाना। लोग अक्सर ये बात मैंने सीखी कि कमर्शली काम ऑयल में नहीं हो रहा होता, घी में हो रहा होता है, और लिटरली शहरी और फैजान तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग कल ही घी में पका के देखना, कॉर्नफ्लोर लगा के टेस्ट।
मैं अपना खाना घी में बनाता हूँ, मैं कीटो डाइट वाला बंदा हूँ और मैं कीटो डाइट फॉलो करता हूँ, मैं अपना फैट्स हाई रखता हूँ तो मुझे घी यूज करना पड़ता है। आप सारे राज खुलवा रहे मेरे
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
ये रेसिपी आउट नहीं हो रही, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ असल चीज जो होती है ना, मुझे खुद बताओ ये तुम लोग भी घी में आलू तल रहे हो, मैं घी में आलू तल रहा हूँ, तो लोग तुमसे नहीं खा रहे मुझसे क्यों खा रहे हैं, या मुझसे क्यों नहीं खा रहे तुमसे क्यों खा रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है, गंदी चटनी और सॉसेस। ये जो बंदा अपनी सॉसेस खुद बनाते हैं दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि सॉसेस जो हैं जिसने अपनी सॉसेस खुद बना ली वो सबसे आगे जाएगा। और लिटरली मैं पूरा दिन किचन में घुस के कुछ भी नहीं करता था, कभी कुछ डाल लूँ कभी कुछ डाल लूँ, अब ये नहीं मैं बताऊँगा क्या डाल रहा हूँ, लेकिन बस यूं यूं करके कुछ ना कुछ करके, हाँ भाई अम्मी आप चखें, किसी और को चखाई, खुद भी चखी नहीं मज़ा आया कुछ और डाल दिया। इस तरह मैं लिटरली डेली सॉसेस बनाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पुदीने की सॉसेस बनाई जिसको मैंने मिंट सॉस बोला, फिर मैंने शवरमा सॉस अपने ही टाइप की बनाई, फिर मैंने मायो गार्लिक सॉस जो सबसे मशहूर होती है वो भी बड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाई, वाइट सॉसेस बनाई, और इसमें मेरी पूरी फैमिली ने मेरी हेल्प की, मेरी अम्मी ने, मेरी वाइफ ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मिल के हेल्प की, क्योंकि देवर द एक्सपर्ट्स, मैं सिर्फ आइडियाज़ लाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉसेस होती हैं वही आपको कामयाब करेंगी और वही आपके कस्टमर वापस लेकर आएगी, अगर आपकी सॉस अच्छी नहीं है वो बंदा भाग जाएगा। और ये मैं बता दूँ, बड़ी मशहूर कहावत है, जितना गलीज उतना लजीज, आपकी सॉस से अच्छी सॉस जो है ना वो 10 रुपये का चिप्स वाला दे रहा होगा, लेकिन काइंडली उससे आपका कंपटीशन नहीं है, रिस्क अल्लाह ताला ने उसको भी देना है आपको भी देना है, बशर्ते आप मेहनत करो, आप अपनी जगह मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल कस्टमर आएगा, और अगर उसको पसंद आ गया वो 10 कस्टमर और लाएगा, फिर वर्ड ऑफ माउथ से ही मार्केटिंग आपकी खुद ही हो जाएगी। अपनी नीयत साफ रखना और 2 नंबरी नहीं करना, काइंडली 2 नंबरी करोगे फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे, फिर आपका बिजनेस खुद ही डाउन जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हुआ ये कि जब मेरा सब कुछ ही रेडी हो गया था तो मैंने फिर आलूमिया क्यों नहीं रिज्यूम किया, फिर आपका सबसे मशहूर चीज़ आई पेंडेमिक, और वो फिर मार्च में पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी, और उसके बाद अब देखो पेंडेमिक आ गया, मैं जॉबलेस हूं, और लोग जॉबलेस होने का जब मातम कर रहे थे या उसने उन्होंने टेंशनें शुरू की कि हम जॉबलेस हो गए, तो आप सोचो मैं तो उससे 2 साल पहले से जॉबलेस था, तो हमारे लिए ये चीज़ कोई नई थी ही नहीं, हमें तो वैसे भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। हाँ ये था कि हम लोग को एक नज़र आ रहा था कि एविएशन में एक न्यू एयरलाइन खुलने वाली है एयर सियाल के नाम से, उसके पेंडेमिक से पहले इंटरव्यूज़ आ गए थे, तो हम रिलैक्स हो गए थे कि अल्लाह का शुक्र है एविएशन वापस आई है, हम अप्लाई करेंगे और फिर लेट्स सी अल्लाह ने हमारा रिस्क लिखा है नहीं लिखा। वो डिले हो गया, अब कुछ पता नहीं था कि ये पेंडेमिक, तुम लोगों को भी पता होगा कि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था कुछ समझ नहीं आ रही थी ये 1 साल चलेगा 2 साल चलेगा कब तक चलेगा। तो आप इस तरह तो नहीं रह सकते कि यार अब हम वेट करें बैठ कर के या पेंडेमिक ख़त्म हो तो हम लोग जॉब अप्लाई करें। तो वो जब पेंडेमिक के दौरान ही मुझे नज़र आया कि नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू। तो फिर अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि मेरे पास आइडिया एक और कहाँ से आया। जब मैं आलूमिया पे चिप्स बेच रहा होता था तो माशाल्लाह कस्टमर कभी कभी इतना ज़्यादा आता था कि आपका आलू ख़त्म हो जाता है, और मेरे कस्टमर दूर दूर से आते थे, कहते थे हमने आपके पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने। अब जब वो मेरे पास पहुंचता था तो लिटरली मेरा अक्सर चिप्स मेरी दुकान बंद करने के जो ऑफिशियल 11 बजे के टाइमिंग थे उससे दो दो तीन तीन घंटे पहले आलू ख़त्म हो चुका होता था। तो ये अल्लाह ताला ने करम किया हुआ था मुझ पर, तो मैं अक्सर उनको बोलता था कि सॉरी यार आलू ख़त्म हो गए, तो वो गुस्सा करते थे यार हम बहुत दूर से आएँ हमें दो कुछ ना कुछ तो दो। तो मैं उनके लिए करता ये था कि मैं अपनी शॉप से निकल के जो नियरेस्ट आलू की सब्ज़ी की कोई जो दुकान होती थी मैं वहाँ जाके आलू परचेज करता था, तो वही आलू जो मैं सब्ज़ी मंडी से 20 रुपीज़ के लाता था वो 40 रुपीज़ के देता था मुझे। तो मैं उससे बोलता था यार ये सुबह तो मैं अपनी 20 रुपये किलो ला रहा हूँ मंडी से, तो वो बदतमीज़ी से बोलता था भाई वहीं से ले लो ना जाके। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो आलू उसी वक्त चाहिए, मेरा कस्टमर वेट कर रहा है, और मुझे पता था कि मैं कस्टमर को सेल करूँगा तो मेरी कॉस्ट निकलेगी भी, प्रॉफिट भी आएगा, और कस्टमर लूज़ नहीं होना चाहिए, कस्टमर आपका किसी हालत में लूज़ नहीं होना चाहिए। मैं उससे वो आलू परचेज़ करता था, और फिर मैं ये टॉपिक एक अलग ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे आइडिया क्या आया कि यार सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियाँ ला के क्यों ना शहर में बेची जाएँ, तो ये तो डबल रेट पे रख के बेच रहे हैं और ख़रीदने वाले तो ख़रीदते हैं, वो तो कोई नहीं जाता, सब्ज़ी मंडी तो बहुत दूर है। तो मैंने जब शाइन एयरलाइन बंद हुई मेरे पास बहुत से लोग आते थे और वो पूछते थे कि हम कौन सा बिज़नेस करें, तो मैं सबको बोलता था सब्ज़ियाँ बेचो, तो वो हंसते थे। मैं कहा हंस क्यों रहे हो यार, कितना अजीब लगेगा सब्ज़ियाँ बेच के। मैंने कहा यार अजीब क्यों लगेगा, मैं आपको चिप्स बेचते हुए अजीब लग रहा हूँ। नहीं बिलाल भाई आपका तो पूरा फास्ट फूड है। मैंने कहा फास्ट फूड नहीं है, वो रहा मेरा पुरानी रेडी वो पड़ी हुई है, मैं वहाँ पे आलू के चिप्स बेचता था, मैंने वहाँ से स्टार्टअप लिया, आप ये देख रहे हो, आप वो रेडी नहीं देख रहे, आप फास्ट फूड देख रहे हो। नहीं बिलाल भाई हमसे नहीं होगा। मैं फिर ठीक है नहीं होगा तो फिर आई एम सॉरी आई कांट गाइड यू, मैंने आपको इतना अच्छा बोल दिया कि आप सब्ज़ी बेचो। वो चीज़ किसी ने नहीं मानी और इतने अरसे तक किसी ने ये काम नहीं किया। फिर वही काम मुझे समझ में आया और अब मैंने यहाँ पे अपने एक स्किल को यूज़ किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी आती थी क्योंकि मुझे वर्डप्रेस पे काम आता था। और ये वर्डप्रेस पे काम क्यों आता था मुझे नहीं पता, शहरी और फैजान तुम लोग को एक पता नहीं पता, मेरी एक वेबसाइट होती थी यूनिवर्सिटी के ज़माने में bilalahmedbhatti.com,
मुझे पता,
और मैं उस वेबसाइट पर बच्चों को फ्री लेक्चर्स देता था मुफ्त के। और उस वक्त भी मुझ पर कॉन्ट्रोवर्सी ये बनाई जाती थी कि बिलाल भट्टी जो है उस वेबसाइट से बहुत कमाता है। भाई मैं क्या कमाता था, मुझे साल के 3,000 अपनी जेब से पे करने पड़ते थे, अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी जेब से 3,000 में पे करता था ताकि मेरी वेबसाइट चलती रहे। सबको पता होगा डोमेन और होस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं, वो मैं अपनी जेब से पे करता था ताकि वो वेबसाइट डूब ना जाए। और वो वेबसाइट 3 साल बाद बंद हो गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 3,000 पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, 3,000 रुपये, तो वो वेबसाइट बंद हो गई थी। तो लोग देखो कैसी कैसी बातें करते हैं, जबकि मैं उस वेबसाइट से फ्री में बच्चों को पढ़ाता था और वो मुझे दुआएं देते थे। तो उस स्किल ने मुझे फ़ायदा कहाँ दिया, 2020 पे मैंने डोमेन ख़रीदा sabzifal.com, sabzifal.pk, दोनों डोमेन ख़रीदे, मेरे दोस्त ने होस्टिंग मुझे परचेज़ करके दी, वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल करके उसने मेरे हैंडओवर कर दी, मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक रेडी की। अब चूँकि मुझे 3D एनिमेशन भी आती थी तो मैंने सारी सब्जियों वब्जियाँ उधर लेके जाके उसके मैं जेपैक से उसको कन्वर्ट करता था PNG फॉर्मेट पे। अब ये फॉर्मेट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत के साथ पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी की और मैंने 15 अप्रैल 2020 को सब्जी फल लॉन्च की, और जिस दिन लॉन्च की उसी दिन से मुझे माशाल्लाह पहला ऑर्डर आ गया। और सबसे पहले ऑर्डर देने वाले मेरे दोस्त ही थे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तियाँ सबसे पहले काम आती हैं और वही आपको सबसे पहले सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे पहले ही दिन ऑर्डर देना शुरू किए और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको आइडिया दूँ कि मैं क्यों सक्सेसफुल रहा सब्ज़ी फल में। मैंने सब्ज़ी के ही रेट पर, जो सब्ज़ियों के रेट आपको सब्ज़ी मंडी में मिलते थे, मैंने उसी रेट पर लोगों को उनके घर पर सब्ज़ियाँ देनी शुरू कर दी। और सिर्फ अपने डिलीवरी चार्जेस रखता था और वो मैंने रखे हुए थे मुनासिब से 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब 10 रुपीज़ पर किलोमीटर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डिफेंस तक सब्ज़ी मंडी से 32-33 किलोमीटर बनता है। मैं डिफेंस फेज़ टू की बात करूँ तो मैंने किया ये कि शुरू में अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 320 रुपीज़ बनता है। अब काफ़ी लोग बोलते थे कि यार ये तो 320 रुपीज़ डिलीवरी मैं दे रहा हूँ, ये बड़ा ज़्यादा है। तो फिर मैंने डिफेंस वालों के लिए 250 रुपये डिलीवरी कर दी थी। अब मैं कमाऊँगा किस तरह? अगर मेरे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो उसको मैं सब्ज़ियाँ तो सब्ज़ी वाले सब्ज़ी फल के रेट, सब्ज़ी के जो रेट सब्ज़ी मंडी पर वही दूँगा, लेकिन मैं उसमें 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ पर केजी रखता था। और इतना आपका हक है, आप इतने तो रखो, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, वो तब भी डिफेंस के रेट से बहुत नीचे होता था। और फिर मैं वो 5-10 रुपीज़ रखने के बाद पूरी की पूरी मेरी जो 70 बाइक है, यहाँ पे भी सब्जियाँ लटक रही हैं, यहाँ पे भी सब्जियाँ लटक रही है। अब अगर आप मेरी वीडियो देखो यूट्यूब पे तो आपने देखा होगा मेरे पेट के आगे भी पेटी पड़ी है आम की, पीछे 5 पेटियाँ पड़ी हैं। एंड मैं क्या हूँ, मैं इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं लाइसेंस होल्डर मैकेनिक हूँ एयरक्राफ्ट का, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मैं 3D एनिमेटर हूँ और मैं रोबोटिक्स में ठीक ठाक काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे वर्डप्रेस भी आता है और पता नहीं क्या क्या मैं करता रहता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आम की पेटियाँ लेके पूरे कराची में घूम रहा हूँ और सब्जियाँ बांटता फिर रहा हूँ, लेकिन हक हलाल का काम।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो फिर फ़ायदा किस जगह, जब मैंने डिफेंस में एक कस्टमर को दिया, उस कस्टमर को इतना वो चीज़ पसंद आई, उसने साथ वाली को बोला, साथ वाली ने अपनी कज़न को बोला, उसने उसको बोला। अब मैं एक ही इलाके में अगर 3-4 जगह दे दूं ऑर्डर तो 250 रुपये से भी लिटरली मेरा 1000 या 1500, इवन के मैं एक दिन में 3000 प्योर प्रॉफिट भी कमा चुका हूँ। एक दिन का 3000 अगर लगा लो तो आप महीने को मल्टीप्लाई करो, 90000 बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये शुरुआत थी, अभी मैंने कोई मार्केटिंग पेड की नहीं थी, मैंने पैम्फलेट भी नहीं बांटे थे, बस एक चीज़ ये की थी कि मैंने जो सामान लिया सब्जी मंडी से वो साफ़ सुथरा लेता था और सिर्फ 5 रुपीज़ टमाटर पे रखे, 5 रुपीज़ प्याज पे रखे, आलू पे रखे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिस पे आप ज़्यादा भी रख सकते हो, ये पे टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन हक हलाल के पैसे रखे, उनको डिलीवर किया, 250 रुपये डिलीवरी पकड़ी और लिटरली इतना 70 cc का इतना पेट्रोल खर्ची नहीं होता, 100-120 रुपये का टोटल पेट्रोल लगा होगा। मैं डिलीवरी 250 लेता था क्योंकि मेरी मेहनत थी और हक हलाल की कमाई थी। उसके बाद जब आप उसी के अगली गली में जाकर 250 रुपीज़ इससे लोगे तो वो तो आपका प्योर प्रॉफिट है। और दूसरी चीज़, इस बिज़नेस में लॉस नहीं था। आप खुद सोचो लॉस कैसे होगा, जब तक ऑर्डर आता ही नहीं था मैं परचेज़ ही नहीं करता था। अब जब आपने परचेज़ ही नहीं किया हुआ तो लॉस किस बात का, और जब ऑर्डर आता था उसको परचेज़ भी करता था और उस पर प्रॉफिट भी रखता था 5-10 रुपीज़ का, और उसको डिलीवरी पे भी उसका डिलीवरी चार्जेस लेता था। सब की सब चीज़ें मेरी जेब में जाती थी, सिर्फ बाइक की महीने के बाद मेंटेनेंस हो गई या 3-4 पंचर हो जाते थे, क्योंकि आपकी जब ड्राइविंग बढ़ती है तो ऑब्वियसली पंचर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, वेबसाइट के डोमेन मैं ख़रीद चुका हुआ था और वेबसाइट की मैं मंथली आप कह सकते हो 1000 रुपीज़ मैं होस्टिंग वाले को देता था क्योंकि वो लास्ट में होती है। इस तरह मैं अपने बिज़नेस को चलाता रहा और माशाल्लाह जब वो बिज़नेस चल रहा था जुलाई में या अगस्त में ड्यूरिंग पेंडेमिक, मैंने अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका हुआ था, तो मैं शाम के टाइम फारिग रहने लगा। सब्ज़ी मंडी का जो काम है वो मॉर्निंग का काम है, तो मैं पूरे कराची में जब डिस्ट्रीब्यूट करता रहता था तो उसके बाद मैं शाम के टाइम फ्री रहने लगा। तो मैंने कहा यार मैं शाम के टाइम को क्यों ना यूटिलाइज करूँ। फिर मैंने उस जगह पे डिलीवरी बॉय की जॉब मुझे मिली दरबार रेस्टोरेंट डिस्को बेकरी पे। तो फिर मैंने वहाँ पे 6 बजे से लेके 12 बजे तक की जॉब ज्वाइन की और मैं डिलीवरी बॉय भी बन गया। अब पूरा दिन मैं सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 3 या 4 बजे तक सब्ज़ी मंडी का काम करता था। 4 बजे मैं घर आता था, खाना वाना खाया या वो भी नहीं खाया। 6 बजे से पहले मुझे दरबार रेस्टोरेंट पहुँचना होता था, फिर वहाँ दोबारा बाइक पकड़ी, रात के 12:30 बजे मेरी वो जॉब ऑफ होती थी, फिर मैं घर आता था और फिर सुबह 6 बजे मुझे सब्ज़ी मंडी जाना पड़ता था। फिर मैं पूरा दिन वो काम करता था। ना सब्जी फल डॉट कॉम में कोई छुट्टी थी क्योंकि वो बिज़नेस है, और ना डिलीवरी के काम में कोई छुट्टी थी क्योंकि वो उनका बिज़नेस है। तो मैं दिन के 18 to 19 hours काम करता था और सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहा था। और मैं काम क्या कर रहा हूँ, सब्ज़ियाँ बेच रहा हूँ और डिलीवरी बॉय बना हुआ हूँ। अगेन रिपीटिंग, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं लाइसेंस एयरक्राफ्ट मैकेनिक भी हूँ, मैं 3D एनिमेटर भी हूँ, एक्सपीरियंस भी बहुत है। कहीं पे भी मैंने अपनी ईगो को, शर्म को या किसी ऐसी चीज़ को नहीं आने दिया। तो काइंडली जो यंग लोग हैं या यंग ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर मैं पेंडेमिक के दौरान किसी ऐसे बिजनेस की बात कर सकता हूँ, और क्या पता मेरी बातें सुनते सुनते आप लोग के भी जहन में कोई ना कोई आइडियाज आ गए हों, तो काइंडली ना सोचो। सिर्फ पहला दिन आपको अजीब लगेगा, मुझे भी लगता था जब मैंने चिप्स बेचे, पहला दिन बहुत अजीब लगता था, दूसरा भी अजीब लगता था। जब आपकी जेब में पैसे आते हैं ना, आपका वो एक फ्लो बन जाता है, फिर आपको फील भी नहीं होता।
बिल्कुल,
पहले दिन मैंने सोचा यार कितना अजीब लगेगा, मैं सब्जी खरीद कर किसी को दे रहा हूँ। नेचुरल सी बात है, लगेगा, सबको लगेगा कि यार ये मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन मेरे शुरू के ऑर्डर देने वाले मेरे दोस्त थे, मैंने वहाँ से लिया सब्जी मंडी से, उनको जाके जब डिलीवर किया तो उन्होंने तारीफ की, उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर एकदम रैंडम किसी भी बंदे का ऑर्डर आ गया, फिर दिल धड़कता था यार पहला कस्टमर है शुरू के दिन है। तो फिर मैंने उनको जब जाके देता था, सर सर कोई भी गलती हो मुझे बताइएगा, सर टमाटर पसंद है, आलू पसंद है बताइएगा सर, ये सर 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 करते करते एकदम करते करते दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर। आपका कस्टमर आपकी ईमानदारी से इम्प्रेस होगा, इखलाक से इम्प्रेस होगा, और थर्ड चीज़ कि अगर उसको शिकायत हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे। अगर मैं किसी के आलू ख़राब होते थे, किसी के टमाटर ख़राब होते थे, ऐसा नहीं है कि मैं ख़राब ख़रीदता था भाई, उनके पास पड़े पड़े भी ख़राब हो जाते हैं, आपको तो पता है पाकिस्तानी कौम का, अपनी गलती तो मानेगी नहीं। तो वो जब शिकायत करते थे, मैं अगले दिन उतनी ही क्वान्टिटी के टमाटर अपनी जेब से ख़रीद के, या कह सकते हो उसका जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया उसी प्रॉफिट से चीज़ें ख़रीद के, समझ लो प्रॉफिट बराबर हो गया। तो मैं उस कस्टमर को जाके दे के आता था और सॉरी बोलता था, और प्रीवियस डे के टमाटर नहीं मांगता था, वो तो वो खर्च करके हड्डी वड्डी में डाल के फारिग हो चुके होते थे, लेकिन मैं उनको नए टमाटर ला के भी देता था। और उसके बाद फिर मैं उनको, उनका इतना दिल जीत जाता था कि उस वक्त का मैंने अपना प्रॉफिट नहीं देखा कि मेरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया, वो स्टैम्प लग जाती थी उसके दिल में कि अब मैंने मंगाना है तो सब्जीपल.com से ही मंगाना है। और लिटरली जब तक मेरी वेबसाइट बंद हो रही थी या जब मैं अपना बिजनेस सेल कर रहा था सब्जीपल.com का, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन तक ऑर्डर आते रहे। और इन दी एंड मुझे अपना सेल करना पड़ा बिजनेस। उससे पहले मैं ये बताऊँ कि दरबार रेस्टोरेंट की जॉब मैंने 1 महीने बाद छोड़ दी थी। उसकी वजह यह थी कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था, और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि मेरा सब्जी फल का बिज़नेस इतना ऊपर चला गया था कि मेरे पास दरबार रेस्टोरेंट के लिए टाइम नहीं बचा। तो भाई जब आपका अपना बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है तो आप दूसरों के लिए क्यों करोगे।
बिल्कुल,
मैं दरबार के रेस्टोरेंट से एक दिन में 650 रुपये कमाता था, और सब्जी फल के एक कस्टमर से मैं इससे ज़्यादा कमाता था। ठीक है, अब ये हर कस्टमर की बात नहीं हो रही, कुछ कस्टमर से मैं ज़्यादा कमाता था, कुछ से कम। डिफेंस वालों के लिए रेट्स थोड़े से डिफरेंट होते थे, करीब के लोगों के लिए डिफरेंट। ये बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं, लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर आप खुद देखते हो कि फ्रूट्स में ज़्यादा प्रॉफिट है, उसमें कम है। ठीक है, इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में और सितंबर में मेरे इंटरव्यूज़ हुए, एक एयरलाइन में भी हुए, और एक फ्यूचर में एक इनकमिंग आप कह सकते हैं होटल चेन खुलने वाली है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरा वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे भी मुझे जर्नी मैनेजर की पोजीशन ऑफर हुई, और मैंने मेरी मुंह मांगी सैलरी पे, उन्होंने मुझे रख भी लिया, लेकिन मैंने वो जॉब रिजेक्ट कर दी। मैंने वो जॉब इसलिए रिजेक्ट की, पैशन ऑफ एविएशन मेरा सियालिन एयर में इंटरव्यू हो चुका था, और मुझे एक वो कहते हैं ना वाइब्स थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ और मुझे यहाँ पे जॉब लग जाएगी। तो अगर मैं होटल वाली जॉब ज्वाइन कर चुका होता तो फिर ऑब्वियसली फिर मुझे छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने एक बहुत बड़ा लाइफ का रिस्क लिया, मैंने उस जॉब को रिजेक्ट किया एंड आई वेटेड फॉर सियाल एयर इंटरव्यू रिजल्ट। और अल्लाह के अल्लाह का शुक्र है कि सियाल एयर से पहले मुझे एकदम एयर ब्लू से भी कॉल आ गई। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको मैं अपने 2 साल के सब्र शुक्र और 2 साल की जो मेरी मेहनत है बताई आपको, उसका रिजल्ट देखने के अल्लाह ताला ने मुझे सेप्टेम्बर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 मंथ मेरे लिए ऐसे गए कि मेरे सामने पूरा बुफे, मुझे 3 जॉब्स की ऑफर आई और 3 में से फिर मैंने अपनी मर्जी की जॉब सेलेक्ट की डेट फॉर सेल और फिर मैं वो भी मैंने भेज दिया। वो मैंने, अब आप खुद सोचो कि वो मैंने जीरो से स्टार्ट किया, पेंडेमिक में स्टार्ट किया, कितना अर्न किया वो मैं अभी सारा डिटेल बता चुका हूँ। और उसके बाद अभी मैंने उसको एक बहुत अच्छे रेट में मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट अपने कस्टमर समेत पूरा का पूरा हैंड ओवर कर दिया एक और ग्रुप को और वो दिसंबर से उसको।
बिलाल भाई का इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है।
मेरे ख्याल में इंटरनेट का तो
हाँ, तो देखें जब तक बिलाल रिकनेक्ट होते हैं तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को जो उन्होंने बातें बताई, देखें एक इतनी सारी स्किल्स होने के बावजूद, सब चीज़ों के होने के बावजूद उन्होंने अपनी ईगो को जो है वो सप्रेस किया और अपने जो बिजनेस का पैशन था उसको परस्यू किया और उस जो इनोवेटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में थे वो उन्होंने जो है वो यूज़ किया। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ जब तक बिलाल भाई का इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होता है। बिलाल भाई आ गए वैसे वापस, हजारी बिलाल भाई नहीं। तो
अच्छा मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ
नहीं वो बीच में आपका जो है ना पहले कटना आवाज कटना अराउंड मतलब ज्यादा देर नहीं हुई होगी, मतलब कुछ लास्ट मुझे तो टाइम का भी नहीं अंदाजा हुआ है। हम लोग
अभी वहां पर थे आप जब आपने वेबसाइट जो अपनी सेल कर दी थी और वहां से जो हम
डिस्कनेक्ट हो गए। चलो वही कंक्लूजन है, मैं टाइम भी देख रहा हूं यार, इतना ज्यादा टाइम हो गया। तुम लोगों ने बोला था 30-35 मिनट्स का होगा,
एग्जैक्टली यार मतलब चीजें इतनी इंस्पायरिंग है कि दिल नहीं कर रहा हमारा खत्म करने का।
बोलने पे आऊंगा तो मैंने वही कहा था, मैं बोलने पे आऊंगा तो खत्म नहीं होगा। दिस इज द लास्ट पार्ट, पार्ट सही चल रहा है ना, नेट कंटिन्यू करो।
जी 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 बिल्कुल।
तो लास्ट पार्ट यही है कि मैंने जीरो से जो स्टार्ट की थी चीज उससे खुद भी कमाया और अगले को वो, इसको कहते हैं बिजनेस फ्लिप करना। तो मैंने अपना जीरो से स्टार्ट करके उससे मैंने ठीक ठाक कमाया, हलाल कमाया और उसके बाद मैंने उस बिजनेस को माशाल्लाह सेल भी कर दिया और नाउ आई एम बैक टू एविएशन एज वेल। और दिस इज द कम्प्लीट जर्नी। इस वक्त मैं करंट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन हूँ सियाल एयरलाइन में। और इसके अलावा या मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ रोबोटिक्स भी पढ़े हैं, रोबोट्स भी पढ़े हैं। इस वक्त मेरे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आके रोबोट्स भी बनवा रहे हैं, मैं उससे भी अर्न करता हूँ और भी छोटे छोटे काम साइड बाई साइड मेरे चल रहे हैं। मुझे देखा देखी बहुत से लोगों को ये बात समझ में आ गई और ये बात आप लोग भी याद रखिएगा कि जॉब के साथ अपना इवनिंग टाइम में कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, जॉब छोड़ के स्टार्ट नहीं करें। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें। जब आपकी जॉब को खतरा हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आपको खतरा फील हो रहा हो तो आपको टेंशन ही नहीं होगी क्योंकि आप अपने इवनिंग के जो एक्सपीरियंस है उससे इतना सीख चुके होंगे कि आप उसको फुल टाइम कर देंगे। और जो लोग जॉबलेस हैं काइंडली पैसे नहीं चाहिए बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, गट्स चाहिए, गट्स और आपका कॉन्फिडेंस और अपनी ईगो को ख़त्म करें और ये सब चीज़ें बिल्कुल बेशरम हो जाए मेरी तरह और घुस जाएं। अगर मैं चिप्स बेच सकता हूँ, मैं सब्जियाँ बेच सकता हूँ तो आप लोग भी बेच सकते हैं और हक हलाल की कमाई है
भाई। ये क्लियर कर दें, घुसना कहाँ है।
अच्छा चेरी मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है,
बहुत ज़्यादा हो गया।
एक सवाल आया
वो
भाई आपने बीच में क्यों दिया, पार्टनरशिप करके डिवाइड करने थे। भाई मैंने इसलिए दिया, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने बिजनेस ख़त्म क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि मैं फ्यूचर में एक और बिजनेस दोबारा से वापस लाऊंगा अपना फास्ट फूड का
इंशाल्लाह।
वो मशीनरीज मैंने बेची नहीं है, अब की बार मैं क्लिफ्टन में अपना सेटअप खोलूंगा पिज़्ज़ा फ्राइज़ का, जल्दी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट खुद जमा करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं पार्टनरशिप पे बिलीव नहीं करता क्योंकि पैसा बहुत गंदी चीज़ होती है, बाप को बेटे से भी लड़वा देती है, तो पार्टनरशिप तो ख़त्म। पैसा बहुत गंदी चीज़ है, मैं पार्टनरशिप पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हाँ, कुछ दोस्त ये फैज़ान और ये शहरी जैसे भी हो सकते हैं जो शायद पार्टनरशिप में बिज़नेस करें, लेकिन मैं पार्टनरशिप में बिज़नेस बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है दोस्ती ख़त्म हो जाती है, और मेरे लिए दोस्ती ज़रूरी है, पैसा नहीं।
जबरदस्त।
दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसको बेचा इसलिए क्योंकि मैं एविएशन पे फुल फोकस करना चाहता हूँ अब। मेरा पैशन रहा है बचपन से कि मैं जहाज़ को साइन करूँ, और अब तक मैं जहाज़ को साइन नहीं कर पाया। साइन के करीब पहुँचा, शाइन एयर बंद हो गई। तो अब दोबारा 2 साल जो मैं अपनी एविएशन में पीछे जा चुका हूँ, गैप की वजह से मुझे वो फिल करना है, और मैं टोटली अब सिर्फ और सिर्फ एविएशन पे फिलहाल फोकस करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सब्जीफल.com वगैरह सब छोड़ दिया, और ये जो रोबोट्स वगैरह हैं इसके लिए फुल डे नहीं देना पड़ता। ये मैं 1-2 घंटे में देता हूँ, फिर अगले दिन 1-2 घंटे देता हूँ। ये मेरे लिए 1 वीक की बात है, मेरे लिए बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये शायान आपका जवाब।
जबरदस्त। तो शेरी, तुम अपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर देना चाहो, क्योंकि काफी टाइम हो गया तो हम उसको रैप अप करने की कोशिश
सॉरी यार,
करेंगे।
बहुत टाइम ले लिया, सॉरी।
नहीं
कोई
नहीं
मसला
सॉरी
नहीं,
नहीं,
कोई
काफी
मसला नहीं।
इंस्पिरेशनल था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी, मतलब आपने शेयर की, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। हम लोग तो आपको काफी फॉलो करते रहते हैं, तो हमने आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया इसी वैसे कि क्यों ना वो फायदा जो हम ले रहे हैं आपको आपकी फीड्स देख के फेसबुक पे और आपके यूट्यूब के थ्रू, क्यों ना वो सबको सुनाया जाए।
बिल्कुल
और सबको, मतलब जरूरी नहीं है कि देखो हम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे बैठे, हम स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी के लिए, और लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन हो ना, तो आप अपने बिजनेसेस में वो सारी इंसाइट्स जो आपने सीखी हैं वो यूज कर रहे होते हो। जैसे आपने वो सब्जी फल में की, आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारे छोटे पॉइंट्स में समझ आई होंगी कि जब आपका वो जो आलू मिया वाला बिजनेस था उसमें आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज कहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंसान नहीं सोच रहा होता, वो उसको उसकी स्किल्स और उसकी डिग्री ने सिखाई होती है, और वो फिर ओवरकम कर रही होती है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा जिंदा रहती है भाई, टेक्नोलॉजी आना जरूरी है, तो टेक्नोलॉजी सीखो, उससे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। मेरे मेरे
जबरदस्त।
तरफ से तो कंक्लूजन ये था, और फिर से एक बार बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं तो ये बोलूंगा कि काफी काफी इंस्पायरिंग जो है जर्नी रही है आपकी, और होपफुली जिन लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने इनको देखा, उससे उन लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी और मोटिवेशन भी मिली होगी कि भाई अगर आप जो भी कर रहे हैं बिजनेस साइड, एक साइड हसल रखना कोई बुरी बात नहीं है, एक साइड में बिजनेस खोलना कोई बुरी बात नहीं है। और बाकी शेरी ने सारी चीज़ें कंक्लूड कर दी ऑलमोस्ट। यही कि अगर आपके पास कोई स्किल है वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी। जैसे शुरू से आपने देखा 3D एनिमेशन सीखी, उसको आपने अप्लाई किया, आपने इंजीनियरिंग की उसको आपने अप्लाई किया, आपने जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी उसको अपने बिजनेस के इस्तेमाल किया, तो जो मेहनत आपने की हुई है वो कभी भी जो है वो रायगा नहीं
जाएगा कोई,
जाएगी।
बिल्कुल
तो बस
सही
इसको
बात।
यहीं पर ही जो है वो कंक्लूड करूंगा। और थैंक यू सो मच बिलाल भाई, तमाम लोगों के
योर
और तमाम
वेलकम।
लोगों को अपनी बातें जो है वो बताने के लिए। और
तुम लोगों
मैं
ने
यहाँ
मुझे
पर एक
इनवाइट किया,
आखिरी
उसके
चीज़
लिए बहुत
बोलना
बहुत
चाहूँगा,
शुक्रिया। हाँ बोलो बोलो
आखिरी चीज़
बोलो
बोलना
बोलो।
चाहूँगा कि इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। सो इसको यहीं पर ही
एग्जैक्टली,
ख़त्म करेंगे। दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर
थैंक यू
टुडे।
सो मच।
लव
ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान आओ तो मुझे मिलना ज़रूर।
पानी आ रहा है मेरे मुंह में, फ्राइज
चलो
खानी है मुझे। बाय बाय
इंशाल्लाह
बाय बाय
इंशाल्लाह,
बाय
चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।